हरे कृष्णा,
बोलो हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
तो आज 2 मार्च है, श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव होकर भी 2 दिन हो चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम लोग गौरांग महाप्रभु जी का जन्म दिवस जो है वो 12 मार्च को मना रहे हैं। आज मंगलवार है, कभी बार कौन सा है वो शुक्रवार के दिन 12 मार्च को हमारे हॉस्पिटल में गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे हम। तो श्री गौरांग महाप्रभु का जो जन्म दिवस है ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी एक बार भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि आप तो जब कृष्ण बनकर आते हैं तो आप सबको कहते हैं कि जो भी मुझे शरण में आएगा उसे मुक्त कर दूंगा मैं, सर्वधर्मम परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज, जो भी सब धर्मों का त्याग करेगा, सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आएगा मैं उसे मुक्त कर दूंगा पापों से, ऐसे अर्जुन को बताते हैं। फिर उनका क्या होगा जो पापी हैं, उनका क्या होगा जो आपको शरण नहीं आते हैं? तो भगवान को जवाब देते हैं कि मैं उनके लिए कलयुग में आऊंगा, कलयुग में आऊंगा और उस समय मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, जो कोई पाप कर रहा हो नहीं कर रहा हो, जो अच्छा हो या बुरा हो, सद्गुणी हो या दुर्गुण से भरा हो, मैं कुछ भी देखूंगा नहीं, कोई स्थान योग्य है कि देखूंगा नहीं, और सब लोगों को मेरे प्रेम को अर्पण करूंगा, इसलिए मैं विशेष रूप से आऊंगा। और कलयुग में मैं ऐसे रूप में आऊंगा जो मेरा रंग राधा रानी का होगा, गौर वर्ण होगा, स्वर्ण वर्ण होगा, और मैं सब लोगों को मेरे नाम के भेंट दूंगा और मेरे नाम के माध्यम से उनको मैं कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रेम दूंगा। तो ऐसे ही बड़ी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, उसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। वो कहानी ऐसे कि भगवान अपने धाम में बैठे हैं, रुक्मिणी के साथ, राधा रानी के साथ भी बैठे हुए हैं, सब एक साथ बैठे हुए हैं गौलोक वृंदावन धाम में। तब भगवान सबसे पहली बार ये इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं राधा भाव को लेकर कलयुग में जाऊंगा और प्रेम से पागल होकर सबको मेरा प्रेम बांटूंगा। तो रुक्मिणी बड़ी व्याकुल हो जाती है और कहते हैं कि आपके चरण कमल मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, आपके चरण कमल को विरह को मैं अनुभव नहीं कर सकती हूँ, सहन नहीं कर सकती हूँ, फिर भी आपकी इच्छा है तो आप इसको पूरे कर लीजिए। उसके बाद उद्धव जी का वर्णन आता है, ब्रह्मा जी का संवाद तो भगवान से हो गया, भगवान ने उनको वादा किया। फिर उद्धव जी से भगवान वार्तालाप कर रहे हैं और उद्धव जी भी कह रहे हैं उनको कि आपका जो प्रसाद है, जैसे कि आपको इत्र अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, अन्न अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, फूल माला अर्पण करते हैं, आपको कुंडल अर्पण करते हैं, भक्तगण सब कुछ आपको अर्पण करते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, और आप उनके उससे आनंद लेते हैं, भक्त के द्वारा जो दी गए वस्तुएं हैं इनसे आप आनंद लेते हो, इन सब वस्तुओं को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद जो है वो उसकी सीमा नहीं रहती है। वो सब वस्तु का मतलब क्या है, जब भगवान को पहनाएंगे माला अगर हम पहनते हैं, भगवान को अर्पण किया हुआ अन्न अगर हम प्रसाद के रूप में खाते हैं, या भगवान को लगाया हुआ इत्र जो हम प्रसाद के रूप में लगाते हैं, वो कहते हैं कि इसी के द्वारा मैं अभी भक्ति में जीवित हूँ, उद्धव जी भगवान को बता रहे हैं। और इन वस्तुओं को प्राप्त, क्योंकि उद्धव जी तो भगवान के बड़े भक्त थे, उद्धव जी का ऐसा महात्म्य है कि उद्धव जी भगवान के चचेरे भाई हैं, उद्धव जी भगवान के सखा भी हैं, एकदम अच्छे फ्रेंड है वो, इतने अच्छे फ्रेंड है कि हंसना खेलना उठना बैठना शिकार खेलना मजाक करना सोना खाना पीना सब साथ में करते हैं, वो इतने अच्छे मित्र है भगवान के। द्वारका में है वो, भगवान के सेनापति भी हैं, द्वारका की जो सेना है उसके सेनापति भी हैं वो, इतने भगवान के वो निकट भक्त हैं, इसलिए उनको भगवान का प्रसाद जो है वो हमेशा प्राप्त होते रहते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं तो प्रसाद मिलेगा उनका। तो उद्धव जी भगवान को भाव विभोर होकर बता रहे हैं कि आपका जो प्रसाद है उसको ग्रहण करके मुझ में माया को परास्त करने की शक्ति उत्पन्न हो गई है, माया का मतलब क्या, सुबह हमने आज प्रार्थना में बताया था आपको कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसको माया शक्ति कहते हैं, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसको राधा रानी कहते हैं। तो ये माया शक्ति जो है, जब भगवान अपनी दृष्टि उस पर डालते हैं तो इस माया शक्ति द्वारा सारा ब्रह्मांड निर्माण होता है, सारा सृष्टि का निर्माण होता है, और भगवान उसके आत्मा हैं उस सृष्टि की। तो वो माया शक्ति जो है वो सभी जीवों को अपने बंधन में बांध के रखती है। इसका मूल क्या है, जो भगवान को भूल कर रहना चाहते हैं, जो भगवान से विद्रोह करके भगवान को सेवा न करते हुए जिनको जीना है, वो सब लोगों को माया अपने कब्जे में कर लेती है और अपने सत्व रज और तमगुण के प्रभाव में उनको रखती है ताकि वो कहीं निकल न जाए, और अपने तीन गुणों के द्वारा उनको कष्ट देती रहती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा बीमारी का जो कष्ट है वो उनको प्राप्त होते रहता है। अपने द्वारा किया गया क्लेश, दूसरे अन्य जीवों द्वारा प्राप्त हुआ पीड़ा और अतिवृष्टि अति गर्मी अति सर्दी भूकंप वगैरह से कष्ट उनको प्राप्त होते रहता है। मतलब त्रिविध ताप कहते हैं उसको, तीन प्रकार के ताप जो है उसको भोगते रहते हैं। तो ये जो माया शक्ति है, भगवान कहते हैं दैवी येषि गुणमयी मम माया दुरात्यया, भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरी जो बहिरंगा शक्ति है वो दिव्य है, लेकिन वो बहिरंगा शक्ति इतनी प्रभावी है कि उसके प्रभाव से मुक्त होना किसी जीव को मुमकिन नहीं है। लेकिन जो जीव मेरे शरण लेते हैं वो इस माया के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो उद्धव जी बता रहे हैं कि आपका प्रसाद जब मैं ग्रहण करता हूं तो मेरा ये विश्वास हो गया है मुझे कि मैं माया देवी के प्रभाव से मुक्त हो गया हूं, और माया को सतत परास्त करने का, सतत उसके प्रभाव से मुक्त हो जाने का जो शक्ति है वो मैं आपके प्रसाद से ही प्राप्त करता हूं। और ये जो उनका संवाद है उद्धव जी भगवान से बता रहे हैं, ये उद्धव जी नारद को बता रहे हैं, नारद मुनि को बता रहे हैं कि मैंने भगवान से क्या संवाद किया। जब नारद मुनि उद्धव के मुंह से सुनते हैं भगवान के महाप्रसाद का गौरव, तो नारद मुनि एकदम भाव विभोर हो जाते, एकदम बेहोश से हो जाते हैं। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, ही बिकेम स्टंड, स्तंभित हो गए वो एकदम, एकदम ऐसे भाव विभोर हो गए और सोचने लगे कि क्या भगवान के प्रसाद की महिमा है, जो भगवान खाते हैं और छोड़ देते हैं बचा हुआ, उसमें इतनी शक्ति है कि साक्षात दैवी ऐसी गुणमयी जो माया शक्ति है उसको परास्त करने की शक्ति उसके अंदर है। तो फिर वो उस महाप्रसाद को पाने की इच्छा उनके मन में होती है। उनके आज तक मैंने भगवान के नाम का कीर्तन किया, मैं तीनों लोक में जाता हूँ वहाँ पर वीणा बजा के भगवान का गुणगान करता हूँ, लेकिन मुझे भी कभी भगवान आज तक महाप्रसाद प्राप्त करने का मौका नहीं हुआ है, भगवान नारायण का, श्री विष्णु भगवान का। तो फिर वो भगवान के उद्धव के द्वारा बताए गए प्रसाद के महात्म्य को सोचते हुए भाव विभोर होते हुए, कभी बेहोश हो रहे कभी उठ रहे हैं, ऐसे करते 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 वैकुंठ पहुंच जाते हैं। और वैकुंठ पहुंचते हैं और सोचते क्या किया जाए, अभी कैसे भगवान का महाप्रसाद प्राप्त किया जाए। तो भगवान के चरणों में लक्ष्मी देवी बैठी हैं, वो निरंतर भगवान के चरणों को सेवा करते रहती हैं। तो वो लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं और खूब सारी सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं, और लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती क्योंकि नारद मुनि आपने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर सेवा किया है, मैं यहाँ पर प्रसन्न हो गई हूँ, आप बताइए कि आप क्या चाहते हो। अब हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं ना, जो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो लक्ष्मी देवी है, भगवान का जो भी कुछ हम देखते हैं यहाँ पर चकाचौंध चीज़ें देखते हैं ना, वो सब लक्ष्मी का प्रभाव है, और हम लोग भगवान को छोड़कर खाली उसको चाहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त हो, प्रसिद्धि प्राप्त हो, नाम प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, सोना चांदी हीरा सब मिले आपको, लेकिन भगवान नहीं चाहिए हमको। रावण ने भी ऐसा ही किया था, भगवान राम के बिना उनको सीता को भोग करने का इच्छा कहते, उन्होंने सीता देवी लक्ष्मी देवी का प्रतीक है, तो राम के बिना सीता को चाहते थे, और जो भी राम के बिना सीता को, नारायण के बिना लक्ष्मी को चाहते हैं उनका विनाश हो जाता है, उसी तरह से रावण का भी विनाश हो गया। लेकिन जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं और लक्ष्मी जी से रावण नारायण जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनके पास लक्ष्मी हमेशा बसी रहती है। अगर आपको सच में लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो आपको नारायण की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि नारायण की जो सेवा करता है, पूजा करता है, लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाती है क्योंकि मेरे पति की मेरे स्वामी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनके ही पास बस जाती है वो। जहाँ नारायण के चरण बसे हुए हैं वहीं लक्ष्मी जी बस जाती है, क्योंकि उनकी सेवा कहाँ पर है, भगवान के नारायण के चरणों पर है। तो ये लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती है क्योंकि नारायण की सेवा करने में लक्ष्मी जी की नारद मुनि सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए वो कहते हैं आप वर मांगो। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे मांगते हुए बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर संकोच हो रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि नारायण का महाप्रसाद प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, मैं उसी की अभिलाषा से यहाँ पर आया हूँ। तो लक्ष्मी देवी अचानक गंभीर हो जाती है एकदम, क्योंकि उसको विष्णु ने कई दिन पहले बता चुके थे वो कि मेरा महाप्रसाद मुझे पूछे बिना किसी को देना नहीं, कभी भी देना नहीं। तो बड़ी गंभीर हो जाती है, अरे मेरे भक्त ने मेरी सेवा की, भगवान की सेवा करने के लिए सहायता की और कुछ मांगा, और मैंने खुद बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, आप वरदान मांगो, और तभी उन्होंने ये मांगा, अब मैं कैसे दूँ उसको। तो वो नारद मुनि को बताते हैं कि ऐसा है कि तेरा मुश्किल काम है, ये मेरी इच्छा है आपको देने की, मैं चाहती हूँ कि ये दे दूँ मैं आपको, लेकिन भगवान ने मुझे स्वयं आदेश देकर रखा है कि मेरा महाप्रसाद किसको देना नहीं है। तो आप समझते हो मुश्किल काम है, मैं कोशिश करूँगी, थोड़ा समय लगेगा इसके लिए, आप जरा वेट करना पड़ेगा। नारद मुनि जी इंतजार करना आरंभ करते हैं और वैकुंठ के 12 साल तक इंतजार करते हैं, वेट कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी रोज भगवान की सेवा कर रही हैं और रोज प्रयास कर रही हैं कि आज पूछूंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, कल पूछूंगी हिम्मत नहीं हो रही है, परसों पूछूंगी हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसे करके 12 साल बीत जाते हैं। और एक दिन बड़े प्रेम से लक्ष्मी से प्रसन्न होकर भगवान उनको अपनी गोद में बिठाते हैं, उनका हाथ हाथ में पकड़ते हैं। तब भी लक्ष्मी पूछने का साहस कर रही थी, क्योंकि देखो ऐसा है ना, भगवान से वो खुद प्रेम प्राप्त कर रही है, लेकिन फिर भी उनको अपने भक्त की जो अभिलाषा है वो पूर्ण करने की इच्छा मन में रहती है। ये सब पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, सीता देवी, सभी लोग ये भगवान के भक्तों पर इतना प्रेम करते हैं कि स्वयं भगवान का प्रेम प्राप्त करते हुए भी उनको भक्तों की याद आती है कि कैसे उनकी इच्छा पूरी करें हम। तो लक्ष्मी देवी के मन चेहरे के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भगवान देखते हैं कि इसके मन में कुछ प्रश्न है, लेकिन ये पूछ नहीं रही है। तो वो कहते हैं कि हे रमे, मतलब रमा भगवान का नाम, पत्नी का नाम है लक्ष्मी देवी, आप बताइए आपके मन में क्या इच्छा है। तो नहीं नहीं मुझे संकोच हो रहा है, मैं नहीं पूछ सकती आपको। नहीं नहीं आप बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। तो कहते हैं कि आपके जो नारद मुनि हैं उन्होंने बहुत सेवा किया आपका, और मैं उनसे वरदान देने का वरदान मतलब प्रॉमिस कर चुकी हूँ, और उन्होंने वरदान में आपका महाप्रसाद मांगा है और आपने मुझे मना किया है, तो मैं कैसे उसको अभी आपसे बोलूँ ये बात, मुझे संकोच हो रहा है। तो सही बात है, मैंने आपको मना किया था, लेकिन मैं वादा कर चुकी हूँ, इसलिए मैं संकोच हो रहा है। तो कोई बात नहीं, किसी दिन मेरे अनजाने में उनको आप मेरा महाप्रसाद दे देना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, दे देना उनको ऐसे। तो फिर एक दिन योग्य समय देखकर भगवान का बचा हुआ प्रसाद नारद मुनि को देती है, और नारद मुनि जैसे ही उसको प्राप्त करते हैं तुरंत उसको खा लेते हैं। और जैसे खा लेते नारद मुनि स्वयं वर्णन कर रहे हैं, नारद मुनि स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि उनको क्या हुआ। वो बताते हैं कि भगवान का जो सौंदर्य है वो हजारों चंद्र और हजारों सूर्य एकत्र करेंगे ना तो कितना प्रकाश उत्पन्न होगा, उससे भी भगवान का सौंदर्य का तुलना नहीं कर सकते। हाँ, भगवान के चेहरे की जो आभा है, जो प्रकाश है उनके चेहरे पर, वो इतना तेज है कि वो हजारों चंद्र और सूर्य जो है वो एकत्र करेंगे तो भी उनकी तुलना नहीं कर सकते, इतना तेज भगवान के चेहरे पर है। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो उनका भक्त हूँ और उनकी भक्ति मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको नम्रता से कहना चाहता हूँ कि उस दिन जब मैंने भगवान का प्रसाद पाया तो मेरा तेज 100 गुना बढ़ गया। भगवान नारद मुनि कह रहे हैं, अब तो गर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताना चाहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ नम्रता से कि भगवान का प्रसाद पाते ही मेरा खुद का तेज 100 गुना बढ़ गया। असल मुझे एक आश्चर्य करने लगे, और मैं वो प्रसाद पाते ही एकदम पागल जैसा हो गया, इतना आनंद मुझे हुआ, इतना आनंद हुआ कि मैं ऐसे गोल गोल घूमने लगा हवा में, और बेहोश, कभी कभी होश में, कभी बेहोश, कभी हो गोल 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 ऐसे जमीन पर लौट रहा हूँ। ऐसे करते करते मैं कब कैलाश पहुँचा मुझे समझा नहीं, मैं कैलाश पहुँच गया। और कैलाश में वहाँ पर शंकर भगवान बैठे हैं, नारद मुनि के भाई है ना वो, आप जानते हैं ना, ब्रह्मा जी का भगवान ने जन्म दिया उनको कमल में, फिर ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मतलब दोनों भवें के बीच में से शंकर जी का जन्म हुआ है, फिर नारद जी का जन्म हुआ है, भाई भाई रहे। तो भाई का देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन भाई की अवस्था देखकर बहुत व्याकुल हो जाते हैं, अरे क्या हुआ भाई को, वैसे गिर रहे हैं उठ रहे हैं गिर रहे हैं उठ रहे हैं रो रहे हैं ऐसे, और देखते हैं कि इनका प्रकाश जो है चेहरे से कितना निकल रहा है इनके, पहले कभी देखा नहीं इनको मैं ऐसी अवस्था में, वो तो भक्त है बिल्कुल प्रकाशमान है लेकिन इतना प्रकाश उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश कभी देखा नहीं। नारद मुनि को पकड़ते हैं वैसे, नारद क्या हुआ तुम्हें, हिलाते हैं उसको, नारद मुनि होश में आते हैं, बोले क्यों ऐसी तेरी अवस्था हो रही है, तो वो कहते हैं लंबी कथा बताते फिर कैसे कैसे मैंने सेवा किया लक्ष्मी का, लक्ष्मी को जो संकोच हुआ 12 साल इंतजार किया, उसके बाद मुझे विष्णु का महाप्रसाद मिला, अच्छा फिर मैंने उसको खाया फिर मेरी ये अवस्था हो गई। अच्छा तुमको विष्णु का महाप्रसाद मिला और भाई होते हुए तुम मेरी याद नहीं आई, मैंने भी कभी महाप्रसाद प्राप्त नहीं किया आज तक, और तुम कैसे मुझे भूल गए, तुम तो सब जीवों का सोचते हो। मैंने कहा कि जब मुझे वो प्रसाद प्राप्त हुआ तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो स्पर्श होते हुए मैंने उसको प्राप्त करके मेरी अवस्था हो गई, मैं सब कुछ भूल गया, देखो महाप्रसाद बचा है कि नहीं। तो उनको होश में आता तो देखते कि हाथ में कुछ महाप्रसाद लगा हुआ है, अभी भी पूरा खाया था ना हाथ से, हाथ धोया नहीं ना, खाते ही बेहोश हो गए। तो हाथ में प्रसाद जो बचा है वो ऐसे दिखाते हैं उनको, तुरंत शंकर भगवान झपट पड़ते हैं उनके ऊपर और वो निकाल के तुरंत खा लेते हैं उसको, और जैसे ही शंकर भगवान उसको खा लेते हैं तो क्या होता है, वो नाचने लगते हैं। हाँ आप जानते हैं ना वो नटराज हैं, स्वयं श्री कृष्ण भी नटराज हैं और शंकर भगवान भी नटराज हैं, लेकिन वो एक नृत्य करते हैं, उनका नाम है तांडव नृत्य। वो जब सृष्टि का नाश करने का समय होता है ना तभी वो तांडव नृत्य करते हैं, उसे सर्व विनाशक नृत्य करते हैं वो, और उनके नृत्य से ही सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, सारे लोग जितने हैं जितने वो नरक में पहुंच जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। तो ये जो है आनंद का नृत्य है लेकिन है कुछ तांडव जैसे ही। इससे जैसे वो नाच करते हैं सारे लोग जो हैं नाच कर रहे हैं लेकिन सारे लोग हिलने लगते हैं, ब्रह्मा लोक से लेके सब लोग हिलने लगते हैं इसे, और पृथ्वी जो है धस जाती है और रसातल में पहुंच जाती है और सब जगह हाहाकार मचता है, लेकिन ये तो आनंद से नाच रहे हैं, वो तो विनाश करने के मुंह से नाच नहीं रहे, लेकिन फिर भी इतना भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। तो सब लोग जाते हैं पार्वती जी का भाग भाग के, सब देवता लोग देखिए आपके पति क्या कर रहे हैं, अभी तो समय नहीं आया प्रलय का, बीच में क्या हो गया उनको नाचने के लिए, तो भी उनको आश्चर्य होता है, अरे अभी मेरे पति अभी क्यों नाच रहे हैं, क्योंकि ऐसे वर्णन है इस ग्रंथ में चैतन्य मंगल नाम के कि शिवजी भगवान के प्रेम में वश होकर रोज नृत्य करते हैं, रोज आनंद से नृत्य करते हैं कैलाश में, लेकिन उनके रोज के नृत्य से कभी कोई पृथ्वी या कोई लोक ढसता नहीं है अपने स्थान से, ये विनाश का समय नहीं आता है उसकी वजह से, आनंद का समय मतलब खुशी से मना रहे, लेकिन आज का नृत्य कोई तो अलग ही है, तो वो खुद आश्चर्यजनक हो जाती है, वो तुरंत वहाँ देखने जाते कहाँ वहाँ नाच कर रहे हैं, तो इतने विभान होकर नाच रहे हैं, उनको होश नहीं क्या हाथ में है क्या नहीं है, कहाँ नाच रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनको उसकी तरफ से क्या हो रहा है, एकदम ऐसे तुरंत अलग भाव से वो नजर दर्शन करती है उनका, तो आके पुकारती है पतिदेव रुकिए, ये देखिए पृथ्वी आई मेरे पास, इतनी भयंकर अवस्था उसकी हो गई, वो तो अपने स्थान को छोड़कर वो गिर चुकी है, नरक के द्वार पर गिर चुकी, तब वो होश में आते हैं, तो क्या हुआ आपने ऐसे क्यों नृत्य किया, तो वो भी पूरी स्टोरी बताते हैं कि नारद मुनि कैसे आए पागल होकर भाव विभोर होकर यहाँ आए, और मैंने जानकारी किया कि उनके हाथ में महाप्रसाद था, मैंने उसको तुरंत प्राप्त कर लिया तो मेरी अपने आप ही अवस्था हो गई, तो कहते क्या आपने महाप्रसाद प्राप्त किया, मैं तो आपकी पत्नी हूँ आप मुझे कैसे भूल सकते हो, हाँ आपने कहा कि नारद मुनि आपको भूल गए लेकिन आप मुझे भी भूल गए, बोले क्या करूँ ऐसे ही संपर्क होगा महाप्रसाद का तो मेरी ऐसी अवस्था हो गई, तो पार्वती जी थोड़े नाराज हो गई कि पतिदेव ने उनको भूल कर महाप्रसाद का ग्रहण किया, तो वो गई और उन्होंने तपस्या किया, बहुत अच्छी तपस्या किया उन्होंने, और उनकी तपस्या के प्रभाव से गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए, गौरांगा प्रकट हो गए, उन्होंने बात किया उनसे कि मैं आपके भाव से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि पार्वती देवी अपने लिए प्रसाद नहीं मांग रही थी, पार्वती तो अन्नपूर्णा देवी है, हाँ वो सब पृथ्वी के जितने जीव है उनकी माता मानी गई है, वो सबकी माता है, और वो सबके लिए हमें सोचती रहती है। वो तो दुर्गा देवी के रूप में आती है और त्रिशूल से जीव को बंद करके रखती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा काम करती है फिर भी उसके मन में बहुत करुणा है। वो सोचती है कि मैं नियम के अनुसार उनको त्रिशूल से बंद करके रखा है मैंने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मुक्त हो जाए सब लोग, ये सब लोग भगवान के शरण में जाए आ जाए और मैं त्रिशूल उनका निकाल लूँगी और उनको सबको मुक्त कर दूँगी। लेकिन जब तक वो भगवान के शरण में नहीं है तब तक मेरा फर्ज है, कर्तव्य है मेरा भगवान के आदेश के अनुसार उनको बंद रखना, बंदिस्त अवस्था में कैद करके रखना। लेकिन उनके मन में एक माँ के लिए रूप, माँ के रूप में बहुत करुणा है, वो सोचते हैं कि सब जीवों का उद्धार होना चाहिए। तो वो क्यों मांग रही है शिव जी से प्रसाद? क्योंकि वो चाहती है कि वो सब जीवों के जीवों के अंदर वो बांट देगी। और जो प्रेम और भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति का अनुभव शिव जी और नारद मुनि कर रहे हैं, वो अनुभव सभी बद्ध जीवों को मिले और उनका सबका उद्धार हो जाए, और वो कोई जन्म मृत्यु के चक्र में ना बंधे, ना कोई बुढ़ापा बीमारी के चक्र में बंधे, ना कोई आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश से कष्ट से बद्ध न हो जाए, ये करुणा उनके मन में है, इसलिए वो तपस्या कर रही है। तो उनको भाव को देखकर श्री कृष्ण भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं कलयुग में आऊँगा तो इस रूप में आऊँगा और मेरा नाम जो है वो सब जीवों में बांटूंगा, वही मेरा महाप्रसाद होगा और स्वयं आके बांटूंगा और तुम्हारी जो इच्छा है सबको महाप्रसाद देने की वो मैं पूरी करूंगा। उसके बाद नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहां पर उनको वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तनाय प्राय यजंती ही सुमेधसा। ब्रह्मा जी भी सब सुन रहे कथा नारद मुनि की, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ जाके आ रहे, उद्धव से मिले, उद्धव से बाद में महाविष्णु के पास गए, महाविष्णु से पार्वती से शिव जी से मिले, फिर पार्वती, सब बता रहे हैं उनको। ब्रह्मा जी भी उसको बोल रहे हैं कि ये साहब जो कह रहे हैं वो सही है, मैंने भी भागवत में सुना है कि कलयुग में कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, मतलब स्वयं कृष्ण आएंगे लेकिन कृष्ण के सावले रंग में नहीं आएंगे, वो स्वर्ण रंग में आएंगे, गौर वर्ण में आएंगे और अकेले नहीं आएंगे, वो अपने साथियों को लेकर आएंगे। स अंग, बलराम भी बताते हैं, मैं समझता हूँ कि स अंग का मतलब है बलराम जी के साथ आएंगे वो, क्योंकि बलराम जी जो है उनका अंग माना गया है, उनके पहले विस्तार है। और वो स अंग उपांग, उपांग मतलब साथीदार उनके, और पार्षदम जो उनके सबसे निकट के भक्त हैं उन सबको लेकर आएंगे वो। और उद्धव जी को भगवान ने बताया था, जब उद्धव जी भगवान से बात कर रहे थे, मैं जब कलयुग में आऊंगा तो मैं कोई शस्त्र धारण करके नहीं आऊंगा, कोई गदा कोई चक्र कुछ भी लेकर नहीं आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु के अवतार में और भगवान के अनेक अवतार में बहुत अंतर है। मैंने आज तक जितने भी अवतार ग्रहण किए, भगवान कहते हैं कि उसमें मैं कभी से आधा सिंह आधा मनुष्य बनकर आया था, हमारे 8 भुजाओं में 8 शस्त्र थे और सब शस्त्र लेकर मैंने राक्षसों को मारा, चक्र लेकर मैंने शिशुपाल को मारा, पौंड्रक राजा को मारा, कई लोगों को मारा चक्र से लेकर, गदा से मारा, धनुष से मारा, और नरसिंह भगवान के रूप में नाखून से फाड़ दिया, राम भगवान में जब रूप में आया था मैं धनुष बाण लेकर आया था और उसमें सब मंत्र बोलकर मैंने सब राक्षसों का वध किया है, तो हिरण्यकश्यप को मार दिया, फिर हिरण्यकश्यप को मैंने वराह रूप में मार दिया। ऐसे हर अवतार में मैं कुछ ना कुछ शस्त्र लेकर आता हूँ और कुछ ना कुछ राक्षसों का वध करता हूँ, लेकिन इस अवतार में मैं किसी का वध नहीं करूँगा। मैं केवल जीवों के अंदर जो राक्षस की प्रवृत्ति है उस पर ही मात कर दूंगा, उसको ही नष्ट कर दूंगा और उनके दिल को जीत लूंगा, और दिल को जीत कर उनको कृष्ण प्रेम दूंगा, मेरा प्रेम उनको दे दूंगा। तो ब्रह्मा जी दोहराते हैं इस बात को जो भगवान ने स्वयं उद्धव जी को कहा था। ब्रह्मा जी बताते हैं हाँ सही बात है कि इस अवतार में वो भक्तों को केवल प्रेम नहीं देंगे, उनकी विशेषता ये है, क्योंकि अलग अवतार में वो क्या करते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनाताय संभवामी युगे युगे, वो अपने भक्तों को तारते हैं और राक्षसों को मार देते हैं और धर्म को नष्ट करने वालों को मारकर धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं इस अवतार में ऐसा नहीं करेंगे, वो धर्म की स्थापना करेंगे लेकिन राक्षसों को मारकर नहीं करेंगे, राक्षसों के मन का जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसी को नष्ट कर देंगे, उनका दिल जीतकर उनको कृष्ण प्रेम देंगे, कृष्ण भक्ति देंगे। बाकी सब अवतारों में वो क्या करते हैं, जब राक्षसों को मारते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन इस अवतार में केवल मुक्ति देंगे नहीं, वो साथ साथ में जो जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है प्रेम उपमार तो महान, भगवान का प्रेम जो सर्वोच्च प्राप्ति है वो सबको कराएंगे वो, इसलिए वो उनका अवतार जो है वो अद्भुत होगा एकदम। सांगोप अंगास्त्र पार्षदम, अंगास्त्र अस्त्र पे बताया है कि यही उनके अस्त्र होंगे, शंख चक्र पद्म गदा तलवार धनुष बाण उनका अस्त्र नहीं होंगे, अपना नाम उनका अस्त्र होगा, इसी अस्त्र से वो अभक्तों पर अटैक करेंगे और भक्तों को भी अटैक करेंगे और दोनों पर सेम परिणाम प्राप्त करेंगे, अभक्तों पर भी नाम का प्रभाव करेंगे और भक्तों पर भी करेंगे, दोनों ही प्रेम में पागल होकर नृत्य करेंगे। और इसी भविष्यवाणी को ठाकुर भक्ति विनोद ने भी देखा था, हमारे मंदिर के अंदर चार फोटोग्राफ है गुरु महाराज के, वो लास्ट फोटो जो है वो ठाकुर भक्ति विनोद जी का है, वो एक बार अपने घर जमुना गंगा जी के पार में उनका घर है गोद्रुम द्वीप में, ऐसे दो मंजिल का घर है, पहले मंजिल की गैलरी में वो खड़े थे तो गंगा जी के उस पार उनको बहुत प्रकाश दिखाई पड़ा अचानक एक दिन, ऐसे एक ही दिन कोई दिन कोई ऐसा मुहूर्त नहीं था वो, तो क्या देखते हो प्रकाश के अंदर कि उस तरफ जो जगह है बहुत बढ़िया, वहां से प्रकाश निकल रहा है बहुत दिव्य प्रकाश, और उस प्रकाश में क्या देखते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग रंगों के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हाथ उठा उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बहुत गौर से देखते हैं, देखते हैं कि कोई लोग काले रंग के हैं, कोई काले रंग के हैं, कोई गोरे रंग के हैं, कोई पीले रंग के हैं, कोई छोटे कद के हैं, कोई ऊंचे कद के हैं, हाँ हर प्रकार के लोग नाच रहे हैं, और जगह अभी कुछ नहीं है, वहाँ पर जंगल है पूरा, कुछ भी है नहीं उधर, लेकिन वहाँ से प्रकाश में वो दृष्टांत देखते हैं, तब वो ऐलान करते हैं कि अभी कुछ ही देर में ऐसा होगा। मायापुर में था ये स्थान, मायापुर में एक समय ऐसा आएगा, भक्तिवेद ठाकुर कहते हैं कि सभी देशों के लोग एकत्र होंगे वहां पर और कीर्तन करेंगे। तो फिर उनको भगवान को प्रश्न करते हैं कि जो लोग आपसे घृणा करके आपसे विद्रोह करके आपको जानबूझकर भूलकर देश छोड़ के चले जाएंगे, उनको नहीं कर रहे हैं भक्ति, तो उनका क्या होगा। नारद मुनि जी बहुत चतुर हैं, वो सोचते हैं सबके बारे में, एक एक जो उसका अंग है वो सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा, उनका कैसा होगा, जो भाग गए उनका कैसा होगा, जो पापी है वो कैसा होगा, सबका पूछ रहे हैं वो। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु बताते हैं कि मैं मेरे सेनापति हैं बहुत सारे जो मेरे मिशन में मेरी सहायता करते हैं, ऐसे सेनापतियों को मैं वहां भेज दूंगा जहां पर वो भाग गए हैं, और वहां पर जाकर मैं मेरे नामों का प्रचार करूंगा। ये भगवान का शब्द है बाय द वे, स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब प्रभुपाद जी यहाँ से वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, कई संत लोग गए, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान जो है जीव पर इतना प्रेम करते हैं कि जो उनको छोड़कर भाग जाते हैं, नहीं कर रहे हैं उनको भक्ति, उनका उनके पीछे पीछे भागते हैं वो। जैसे एक पिता अपने घर छोड़कर निकले हुए बेटे के पीछे पीछे भागते हैं, आ जाओ घर पे, आ जाओ घर पे, आ जाओ घर पे, आ जाओ, इसको करुणा कहते हैं। तो कोई कारण नहीं होता है, क्यों ऐसा प्रेम करते हैं, उनको ठुकरा चुके हैं वो, उनसे विद्रोह कर चुके हैं, उनके नहीं चाहते उनको, फिर भी भगवान उनके पीछे पीछे भागते हैं। वो जानते हैं कि जीव का कल्याण जो है उनके धाम में है, यहाँ पर जीव का कल्याण नहीं, यहाँ पर केवल दुख ही दुख है सब जगह पर, इसलिए वो अपने सारे अवतारों का नियम जो है, क्या अवतारों का नियम है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का नाश करना और संतों का रक्षण करना, ये उनके अवतारों का नियम है। अपने द्वारा बनाया गया वो जो अवतारों का नियम है वो इस अवतार में तोड़ देते हैं, इसलिए हम जब जगाई मदाई कथा सुनते हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है आपको कि जगाई मदाई एक दिन में इतना पाप करते थे कि दुनिया भर के सब लोग जिंदगी भर मिलकर भी जितना पाप नहीं कर सकते हैं वो एक दिन में करते थे दोनों मिलकर, इतने भयंकर पापी थे वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक ही झटके में उनको उद्धार कर दिया, क्योंकि मधाई ने जब नित्यानंद प्रभु को मारा मटके से, जान से मारने के हेतु से मारा, तब जगाई ने उनको बचाया, उसने कहा तुमने मेरे नित्यानंद को बचाया, मेरे भक्त नित्यानंद को बचाया, इसलिए मैं उनको गले लगाया। और उस पापी जगाई के मन में अचानक कृष्ण प्रेम के फवारे उड़ने लगे और वो भाव विभोर को नाचने लगा। तो मधाई ने क्या बोला, अरे चैतन्य महाप्रभु भगवान, मैंने और इंद्र ने मिलकर पाप किए थे, हाँ वी हैव डन टुगेदर, हम लोग ने सब पाप साथ में मिलकर किए, आपने उनका उद्धार किया मेरा उद्धार नहीं किया, नहीं तुमने मेरे भक्त को मारने का प्रयास किया इसलिए मैं तुमको उद्धार नहीं करूंगा, तुम भक्त अपराधी हो, इसने तुमने मारते हुए मेरे भक्त को बचाने का प्रयास किया इसलिए मेरा सेवा किया उन्होंने, मेरे भक्त का सेवा किया इसलिए वो मेरे कृपा के योग्य है, इसलिए मैं उनको कृष्ण प्रेम दे रहा हूं। तो ये देखकर जिन पर उन्होंने हमला किया था वो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं इनके अपराध को स्वीकार नहीं करता हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इन्होंने जो मटके से मारा है कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, कोई बट आप इन पर कृपा करने को छोड़ना नहीं प्लीज, जैसे आपने जगाई को भी कृपा किया है उस मदाई पर कृपा करना। तो भगवान ने फिर नित्यानंद प्रभु की अपार करुणा को देखते हुए उनकी इच्छा के अनुसार मदाई को भी गालीगन दिया और दोनों कृष्ण प्रेम से पागल हो गए। ऐसा नहीं कि पहले पाप से मुक्त हो गए फिर शांत हो गए फिर भक्ति किया फिर कुछ दिन के बाद में कुछ महीने के बाद में उनको प्रेम भक्ति प्राप्त हो, ऐसा नहीं, सब कुछ इंस्टेंटली हो गया, एक ही झटके के अंदर सब पाप से मुक्ति हो गई और कृष्ण प्रेम से वो नाचने लगे। उस समय सब लोग दिखते रह गए, अरे ये नवद्वीप धाम में इतने पापी लोग थे, ये लोग दो जन इतने पापी थे कि कोई लोग जब वो वहां से आ रहे तो रास्ता बदल जाते थे, कोई उनका देखना भी जाते नहीं थे उनको, इतने पापी थे वो, उनका दिन का कोटा था इतना लोगों पर रेप करना, इतने लोगों को लूटना, इतने लोगों को मार देना, इतने लोगों को कष्ट देना, गायों को मार, बहुत सारा उनका पाप का एक लिस्ट था, वो रोज करते थे, शराब पीना, नशा करना, आतंक मचाना, लोगों को डराना, तो बहुत भयंकर काम, आग लगाना लोगों के घर पे, सो रोज का काम करते थे वो, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे फिर भी इतने पापी राक्षस थे वो। तो सब लोग एकदम आश्चर्य हो गए ना, अरे ये कैसा हो सकता है, इतने पापी लोगों का उद्धार एक झटके में कर दिया, कोई तपस्या नहीं, कोई जप नहीं, कोई विधि नहीं, कोई नियम का पालन नहीं, कुछ नहीं, केवल नित्यानंद प्रभु ने कृपा विनती किया और खत्म, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बात फैलकर यमराज तक पहुंच गई, यमराज को भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि यमराज के जितने असिस्टेंट थे ना ऑफिस के लोग उनके जन उनका काम क्या रहता है, सब लोगों का पाप का रिकॉर्ड रखना, और इतना ही नहीं वो पाप का रिकॉर्ड रख के उसके मिजाज उनको दंड भी देना। तो ये दो जन के इतने पाप थे, इतने पाप थे, इतने पाप थे कि उन्होंने यमलोक के अंदर गड्ढे खोद के रखे थे, उनका जो स्टॉक था ना, आपका था स्टोर हाउस था ना, वो सब इतना भरा हुआ था इनके रिकॉर्ड से कि जगह ही नहीं थी उनके पास, उन्होंने अनेक गड्ढे खोदे अपने धाम में, अपने लोक में, और गड्ढे भर भर के भी गड्ढे के ऊपर से वो भय रहे थे उनके रिकॉर्ड्स, इतने पाप हो गए थे उनके, बोले ये कौन लोग है, इतने दो ही लोग मेरे सारे स्टाफ को एकदम एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ओवर टाइम दे के थक गए वो अपने स्टाफ को, परेशान हो गए वो, सब रिकॉर्ड रख रख के बेहोश हो रहे थे इतने। तो उनको खबर मिली कि अरे महाप्रभु ने उनको एक झटके में माफ कर दिया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है मुझे। तो ब्रह्मा जी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने भी खबर सुनी थी कि अरे जगाए मदय का उद्धार कर दिया महाप्रभु चैतन्य ने, तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठ के जा रहे हैं, तो बोलते कि मुझे अभी चलना है, मुझे खुद अपने आंखों से यकीन करना है, क्योंकि मेरा काम है ना, समझो भगवान ने उनको मुक्त नहीं किया और मैंने रिकॉर्ड नष्ट कर दिया तो मेरे को दंड भोगना पड़ेगा ना कि मैंने भगवान का सेवा ठीक से नहीं किया। तो इनका रिकॉर्ड नष्ट मानने के पहले मैं जाकर खुद अपने आंख से देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, इसलिए वो भैंसा है ना, भैंसा उनका वाहन है ना भैंसा, उस पर बैठ के उसको भा रहे जाओ जल्दी अभी का भी मुझे पहुंचना है। तो भैंसा बहुत देर से भागता है, जोर से भागता है, लेकिन उसके मुंह से झाग निकलता है, बेहोश होकर गिर जाता है, उनको परेशानी होती है, उनको तुरंत पहुंचना है, तो उनका वाहन ही खत्म हो गया। तो वहां से ब्रह्मा जी को देखते हैं वापस, ब्रह्मा जी कहते आ जाओ आ जाओ मेरे हंस पे आ जाओ, मैं आपको लिफ्ट देता हूँ। तो उनके हंस पे लेते हैं, भैंसे को छोड़ देते हैं और हंस पे बैठ जाते हैं, और वहां ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, फिर किसने किसको क्या किया, फिर कैसे भगवान ने उनको जगाई को आलिंगन दिया, फिर कैसे मदाई को आलिंगन दिया, फिर कैसे वो भाव विभोर हो गए नाचने लगे। ये वर्णन सुन के यमराज को यकीन नहीं हुआ, वो यमराज हंस के ऊपर ही बेहोश हो गए, और ब्रह्मा जी होश में है, वर्णन कर रहे हैं, यमराज जी बेहोश है हंस के ऊपर, हंस जो पृथ्वी पर उतरता है उसी सीन पर अपनी आंखों से वो फिर जल अपने कमंडल से छिड़कते हैं, ब्रह्मा जी यमराज को होश में लाते हैं, और देखो देखो यमराज देखो, मतलब ये सब जरा आकाश में हो रहा है सीन, ऐसे नीचे वो सब लीला हो रही है, चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, जगाई मदाई नाच रहे हैं और नीचे चल रहा है, देख रहे देखो आपको बताया था ना, ये तो जगाई मदाई देखो पागल होकर नाच रहे हैं कृष्ण प्रेम में, कृष्ण का नाम लेकर नाच रहे हैं, देखो कैसे प्रेम से विभोर हो रहे हैं, अभी तो आपको यकीन हो गया ना। तो उतने में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो इनके सारे पाप जो है ये मैंने ले लिए हैं, अभी देखो उसका परिणाम क्या होता है। तो अचानक जो है चैतन्य महाप्रभु जो गौर वर्ण के हैं वो एकदम काले हो जाते, ऐसे धीरे धीरे से ऊपर 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 जो काला रंग जो है पूरा उनके शरीर को छा जाता है। अरे आप तो श्याम कृष्ण हो गए, आप तो पहले गौर वर्ण के थे, ये तो श्याम वर्ण हो गए आप। बोले ये सब जगह मजाए का पाप है, जो सब यमराज ने अपने रिकॉर्ड में लिख के रखा है ना वो सब अभी मेरे अंदर आ गया है। मैंने केवल मेरी इच्छा से उनको मुक्त करने के लिए करुणावश ये सारा पाप जो है मैं ले लिया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि हरि नाम महामंत्र का क्या महात्म्य है, हरे कृष्ण महामंत्र का क्या महात्म्य आपको बताता हूं। अभी आप सब लोग मृदंग करताल लेकर भक्तों को बताते हैं, नाचो आप, कीर्तन करना आरंभ करो, और फिर आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जो महात्म्य है वो अपने आप ही नजर आएगा मेरे सामने। सब भक्त लोग भगवान के आदेश के अनुसार मृदंग करताल लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें जगाई भी नाच रहे हैं, मदाई भी नाच रहे हैं, नित्यानंद प्रभु सब लोग नाचने लगे। और जैसे कीर्तन का आवाज गूंजने लगा वैसे वो सारे जो पाप हैं महाप्रभु के शरीर के अंदर जो है पुनः नष्ट होने लगे, ऐसे 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 नीचे पुनः महाप्रभु शरीर जो है वो गौरांग स्वर्ण वर्ण का हो गया और पुनः वो चमकने लगे। हरि नाम के कीर्तन के प्रभाव से सारे पाप महाप्रभु के शरीर से नष्ट हो गए। महाप्रभु ने कहा देखा, मैंने आपको बताया था कि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसके नाम का कीर्तन करता है वो सभी तुरंत पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो पाप मैंने स्वीकार किए और फिर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वो मेरे शरीर से निकल गए, वो कहाँ गए? वो वहां जाएंगे जहां पर मेरे भक्तों का अपराध होगा। जो व्यक्ति मेरे भक्तों का अपराध करेगा उनके हृदय में ये प्रवेश करेंगे, ये आसमान में रहेंगे हमेशा, किसी को तरह कष्ट नहीं देंगे वो पाप। लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्त को कष्ट देगा, मेरे भक्त का दिल दुखाएगा, मेरे भक्त का अपराध करेगा, उसके हृदय में ये सब प्रवेश करेंगे। ये बहुत सोचने लायक बात है। इसलिए हमको लगता है ना कभी कभी, अरे क्या भक्त है ये, तो कल आया था, मैं तो 15 साल पुराना भक्त हूँ। तो हम उसको अपराध करते हैं, उसको दुखाते हैं, उसको कष्ट देते हैं, या वो हमारा जूनियर है, हम उसके सीनियर है। हॉस्पिटल में होता है ना, हम सब लोग भक्त लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई सुपरवाइजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई अकाउंट मैनेजर है, सभी अलग अलग पोजिशन में भक्ति बैठे हुए हैं और अपराध होने की संभावना है क्योंकि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। कभी किसी को कुछ बोल दिया हम लोग ने, कुछ कह दिया, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भक्त का दिल दुखे। हम लोग वाद कर सकते, वाद विवाद, लेकिन दिल में उसको दुख नहीं पहुँचना चाहिए। ऐसा कुछ गहरी बात नहीं बोलनी चाहिए या कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए जिसमें उसको ठेस लगे, हृदय में कष्ट हो, पीड़ा हो, यातना हो हृदय में उसके। क्योंकि जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान सब कुछ माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके भक्त का आपने अपराध किया तो वो माफ़ नहीं कर सकते। अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने अपराध किया तो अम्बरीश महाराज, जैसे ही उन्होंने अपराध किया, दुर्वासा मुनि ने अपराध किया अम्बरीश महाराज का, अम्बरीश महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, दुर्वासा भी बड़े योगी भक्त हैं भगवान के, लेकिन अम्बरीश महाराज का अपराध किया दुर्वासा मुनि ने तो तुरंत चक्र लग गया उनके पीछे। भगवान कहते हैं कि जैसे ही अम्बरीश महाराज का अपराध हुआ मेरा चक्र मेरे हाथ से निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सका, वो मेरे नियंत्रण के बाहर मेरे उंगली से चक्र छूट गया और वो अपने आप पीछा करने लगा। तो दुर्वासा मुनि को क्या लगा, अरे चक्र तो विष्णु का है ना, तो विष्णु के पास जाऊंगा और उनकी याचना करूंगा, फिर वो चक्र मेरे से पीछे छोड़ देगा पीछा। तो भाग के जाते पहले ब्रह्मा जी के पास, बोलते कुछ उपाय करो, वो चक्र मेरे पीछे आ रहा है। बोलते हमारा चक्र नहीं, वो विष्णु का चक्र है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाओ यहाँ से। दुर्वासा मुनि, ये ब्रह्मा जी विष्णु जी का और आपका बीच में का गड़बड़ है, मुझे हमको मत खींचिए उसके अंदर। फिर वो कैलाश पहुंचते हैं और शिव जी को देखते बचाओ शिव जी बचाओ, तो वो कहते हैं अरे ये तो चक्र भगवान कृष्ण विष्णु का है, वो तो मेरे स्वामी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाओ। बोले कहाँ जाओ, अभी विष्णु के पास ही जाओ। तभी लोग हाँ कोई बात नहीं, विष्णु के पास जाऊँगा तो विष्णु खुद बचाएंगे मुझे। तो अहो आश्चर्यम, विष्णु क्या बोलते हैं, अरे जब मेरे भगवान मेरे भक्तों का अपराध होता है तो मेरा चक्र मेरे अधीन रहता ही नहीं है, मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाता है, अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा अस्त्र जरूर है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अभी वो प्रश्न पड़ गया, अरे क्या करूँ मैं, जिसका अस्त्र है उसके पास गया, मैं उनकी याचना कर रहा हूँ, वो बोल रहे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है फिर? बोले जाओ, जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ, जब वो अपराध को माफ कर देंगे आपको, जिसका अपराध आपने किया है, तब ये चक्र जो है दोबारा मेरे हाथ पे लौट के आएगा। क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता। तो पूरा यात्रा किया उन्होंने, ब्रह्मा लोक, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक, पूरा दोबारा पूरा यात्रा किया पृथ्वी लोक तक। और वहां पर अम्बरीश महाराज खड़े हैं हाथ जोड़कर, बोले मेरा अतिथि जो था उन्होंने एक साल का अपराध उपवास किया था विश्व के कल्याण के लिए, और उसका जब उपवास छोड़ने का समय आया ना तो इधर दुर्वासा मुनि आ गए मेहमान के रूप में। अभी अगर उपवास समय पर नहीं छोड़ेंगे तो विश्व का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा। और अगर ले लेंगे तो मेहमान को कुछ दिए बिना मैंने जल प्राशन किया तो उनको अपराध लगेगा। तो फिर वो प्रश्न में आते हैं, संतों को पूछते हैं वो, क्या करूं मैं अभी। संत लोग कहते हैं कि आप चरणामृत थोड़ा सा ले लीजिए, उससे उपवास भी छूट जाएगा और संत का अपमान भी नहीं होगा। तो संतों को पूछकर अम्बरीश महाराज चरणामृत सेवन करते हैं, और ये देखते हैं कि मैं आने के पहले, मुझे कुछ देने के पहले इन्होंने चरणामृत ले लिया तो ये अपराध समझते हैं उसको, और राक्षस को निर्माण करते हैं, बोलते हैं कि मारो इसको, इसने मेरा अपराध किया है, मेरे अतिथि होते हुए मेरे पहले चरणामृत को प्रश्न किया है। तो अपने जटा को धार निकाल कर जमीन पर पटकते हैं और राक्षस को निर्माण करते हैं, उनको आदेश देते हैं कि अम्बरीश महाराज को वध कर दो। तो अम्बरीश महाराज तो ऐसे ही खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, ना वो राक्षस को मारने का प्रयास कर रहे हैं, ना धनुष उठा रहे हैं, ना कुछ नहीं कर रहे, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। और हाथ जोड़ के खड़े हैं, बिल्कुल प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। उस समय वैकुंठ से तत्क्षण चक्र आता है और राक्षस का वध कर देता है, और वही चक्र जो है दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। अब ये चक्र जो है वैकुंठ से वापस लौट के आ रहा है, फिर चक्र उनके पीछे पीछे ही है, और वो आते हैं अम्बरीश महाराज के पास में तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोलते माफ़ कर दो। मैंने कहा मैंने तो अपराध किया लिया नहीं आपका, मैंने अपराध समझा नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप गए किधर। मैं आपका सत्कार करने के लिए रुका हूँ यहाँ पर, एक साल मैंने उपवास करके चरणामृत लेके छोड़ दिया उपवास, लेकिन बाद में फिर भी उपवास ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो मैंने आपको जल भी नहीं दिया, इसलिए वो और एक साल उपवास करते हैं जब तक ये सब घूम के आते सब जगह पर, तो उनके चरणों में गिर जाते हैं, बोलते कि आप माफ़ करो, मैंने आपका अपराध किया है, चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। तो लगा मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, ठीक है आपने कुछ मेरा अपराध नहीं किया, मैं आपको अपराध ग्रहण नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। तो फिर चक्र चला जाता है और भगवान विष्णु के हाथ में वापस लौट के आता है। क्या मतलब उसका हुआ कि भगवान जो भक्त का अपराध करता है उसको तब तक माफ़ नहीं करते हैं जब तक भक्त उसको माफ़ नहीं करते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जब हम किसी भक्त का अपराध करते हैं तो किसी और से जाके माफ़ी नहीं मांग जाए, वेरी सॉरी है उसको जरा बोल देना, नो, उनको खुद जाकर उनकी माफ़ी करनी चाहिए। और केवल ऊपर ऊपर से बोलने के लिए भी बोला था, प्रवचन में सुना था, किताब में पढ़ा था, इसलिए ऊपर ऊपर से बोल दिया नहीं, हृदय से पश्चाताप पूर्वक भावना से सच में सत्य में उनसे माफ़ी की याचना करनी चाहिए, और तब जाकर जब भगवान के भक्त आपको माफ़ करेंगे तब ये अपराध जो है वो छूट जाएगा। नहीं तो ये वैष्णव का अपराध जो है ये जगाए मजाए के पापों को आपकी ओर खींच लेगा और आपके जीवन को और भ्रष्ट कर देगा। आपने कहा ये तो पाप मैंने कभी किए नहीं थे, लेकिन ये हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कि महाप्रभु ने कह दिया है मेरे भक्तों का अपराध मत करना। तो आप समझ सकते हैं मैंने सब कहानी आपको क्यों बताई, कि ये इनका अवतार का खुद का बनाया हुआ नियम जो है वो तोड़ने की लीला है उनकी, कि पापी लोगों को नाश करना चाहिए उनको, वैसे देखा जाए तो पापी लोगों को नाश नहीं कर रहे हैं, पापी लोगों के हृदय के अंदर जो पाप प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको नष्ट करके उस जगह पर प्रेम को रख रहे हैं और पापी लोगों को प्रेम में विभोर कर रहे हैं। ये जय विजय कौन थे मालूम है किसको, ये अपने जो जगाई मदाई कौन थे, ये वही जय विजय है जिनको शाप दिया गया था और फिर वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, फिर उनका भगवान वराहदेव और हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप का नरसिंह देव ने वध किया, फिर दोबारा वो रावण कुंभकर्ण बनकर आए, फिर रामचंद्र भगवान के अवतार में भगवान ने दोनों का वध कर दिया दिव्य बाणों से, फिर तीसरी बार वो शशुपाल और दंतवक्र बनकर आए, फिर कृष्ण भगवान ने अपने अवतार में उनका वध कर दिया। भाई उनका शाप तो पूरा हो गया था, लेकिन उनका शाप पूरा होने के पश्चात वो वैकुंठ में चले गए द्वारपाल के रूप में, लेकिन जब उन्होंने सुना कि हमारे भगवान हमारे ठाकुर जी अद्भुत रूप में आ रहे हैं लीला करने के लिए, इस अवतार में वो किसी पापी को नहीं मारने वाले हैं, पाप को मारने वाले हैं और कृष्ण प्रेम को बांटने वाले हैं, इस दोबारा वो राक्षस बन के आते हैं अपने शाप के बाहर, हाँ शाप के अंदर नहीं, स्पेशल खुद की इच्छा से राक्षस बन के आते हैं और फिर ऐसी लीला करते हैं जिससे महाप्रभु जी का ये जो परम करुणा अवतार है उसकी लीलाओं का जो प्रदर्शन करने के लिए वो स्वयं आते हैं। ये जगाए मजा जो है वो जय विजय है, वो हिरण्यक्ष को हिरण्यक्ष और हिरण्याक्ष हैं, और फिर जगाए मधाई के उद्धार के रूप में वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो ये गौरांग महाप्रभु के अवतार की विशेषता है, और हम सब लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग सब लोग गौरांग महाप्रभु के कलयुग में ही जन्म लिए हुए, जिस कलयुग में उनका अवतार हुआ है उसी कलयुग में हम लोग जन्म लिए हुए हैं। वो कलयुग जो है वो 4,32,000 साल का होता है, उसमें से केवल 5,000 साल पूरे हो चुके हैं। पहले 5,000 साल में ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, और हम लोग अभी आज जो साल चल रहा है वो कितना साल है, केवल 524 साल हो चुके हैं, केवल 524 साल। केवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाखों लाखों युगों का, सालों का एक युग बनता है, और ऐसे अनेक युग एकत्र होकर एक कल्प बनता है, और ऐसे हजार कल्प में से 1,000वें कल्प में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते, इतना दुर्लभ है उनका अवतार। इसलिए हम लोग केवल 524 साल कहते हैं, क्योंकि 524 साल तो कुछ भी नहीं होते लाखों करोड़ों साल के सामने। इसलिए हमारा भाग्य है कि हमने उसी कलयुग में जन्म लिया है जिसमें चैतन्य महाप्रभु आकर लीला कर चुके हैं, और उन्होंने वरदान भी दिया है कि इसी मेरे अवतार के पश्चात, क्योंकि उन्होंने 48 साल लीला किया, 1486 में उनका जन्म हुआ और 1534 में वो लीला छोड़कर खत्म करके अपने धाम में चले गए, 48 साल लीला किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जन्म से 10,000 साल तक जो भी मेरे नाम का जपों को ग्रहण करेगा उसी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके मेरे धाम में चला जाएगा। इस पीरियड को कलयुग का स्वर्ण युग कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जन्म से अगले 10,000 साल, मतलब 1486 और 10,000 में जोड़ लो 114,86 है ना, इज दैट राइट, 11,486 ये जब सन जब आएगा तब तक ये स्वर्ण युग चलता रहेगा, और तब तक जितने भी लोग भगवान के नाम को ग्रहण करेंगे वो सब लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों को 11,486 तक रहने का इंतजार करना जरूर नहीं है, इसी जन्म में आपको अपना काम पूरा कर देना है। इतना साल कौन जिएगा इधर, इतने कष्ट सहेंगे यहाँ पर, इतने पीड़ा होगी, यातना होगी, जन्म मृत्यु वापस आप अलग अलग शरीर में आएंगे, कष्ट भोगेंगे, क्या जरूरत है हमको सब करने की। इसी जन्म में भी आप अगर ग्रहण करेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप 10 जन्म तक आपको नाम ग्रहण करेंगे तो 11वें जन्म में आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कहा जब भी नाम ग्रहण करेंगे उसी जन्म में आप मुक्त हो सकते हैं, उसी समय उसी जीवन में आपका उद्धार हो सकता है। ये गौरांग महाप्रभु की कृपा जो समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान का अवतार होना, राक्षस का वध होना, ये बहुत आसान है समझने के लिए, लेकिन राक्षस लोगों का भी उद्धार होना ये समझना बहुत मुश्किल है। और ये केवल एक ही अवतार करता है, भगवान के जितने अवतार है उसमें परम श्रेष्ठ अवतार जो है वो गौरांग महाप्रभु का है, क्योंकि वो केवल अपने नाम के मंत्र के भेंट देकर सभी संतों का और राक्षसों का सबका उद्धार कर देते। देखते नहीं कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पापी है कि नहीं है, कोई स्थान अच्छा है कि अच्छा नहीं है, ब्राह्मण कुल का है कि शूद्र कुल का है, कोई कुछ देखते नहीं हो, जो भी सामने आएगा उस पर वो कृपा कर देते। केवल एक ही बात देखते हैं, विश्वास के साथ अगर भगवान को वो चाहते हैं तो उन पर वो कृपा कर देते। तो आपको कम से कम श्रद्धा तो होनी चाहिए, श्रद्धा मात्रे मूल्य, श्रद्धा मात्रे शुद्ध नाम, जिनके मन में श्रद्धा से वो भगवान के नाम को चाहते हैं उन पर वो कृपा बरसा देते हैं। इसलिए भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में हम लोग सब लोग रहते हैं, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अनायास से हम लोग प्रसाद खा रहे हैं भगवान का। हमारे तेज को हम लोग 100 गुना बढ़ते हुए नहीं नज़र आ रहा है ना, सबको लगता नहीं कि हम लोग कोई 100 गुना पावरफुल बन गए हैं, दिख रहे हैं, लेकिन परिणाम तो आप पर हो रहा है। नारद मुनि शुद्ध भक्त थे एकदम भगवान के, इसलिए वो प्रसाद खाते ही उनका तेज 100 गुना बढ़ गया। हम लोग अभी भी पापी हैं, हम लोग के मन में अभी पाप वासना भी अभी है, प्रसाद भी हम रोज खा रहे हैं विष्णु का, लेकिन हमारा प्रकाश 100 गुना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग को अभी पाप छोड़ना है, अभी तक हमने अभी तक पूर्ण विश्वास के साथ पाप छोड़ा नहीं है, अभी भी हम लोग जाने अनजाने में पाप कर रहे हैं, धीरे धीरे क्यों ना हो, हमको पूर्णता से पाप मुक्त होना है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अगर कोई पाप को छोड़ता है और श्रद्धा से एक बार भगवान का नाम लेता है तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति उनको हो जाएगी। रहस्य क्या है, पाप मुक्त जीवन, जो पापों के द्वारा अपना जीवन जो दूषित हो गया है उन पापों को छोड़ना पड़ेगा। नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, ये सब पापों को छोड़ देना पड़ेगा और भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, तब जाकर हमको चैतन्य महाप्रभु इस युग में विशेष रूप से हमारे ऊपर प्रेम का वर्षाव करेंगे, भक्ति का वर्षाव करेंगे, और इसी जीवन में हम सब लोगों को, चाहे हम कोई चपरासी हो, कोई वॉचमैन हो, कोई आई भाई हो, वार्ड बॉय हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मैनेजर हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति में हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी पोजिशन में हो, अगर वो पाप मुक्त होकर उनके नाम का जप करता है तो भगवान उनको तुरंत मुक्त कर देंगे। आप बोल नहीं सकते कह रहे हम लोग गरीब है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारा कैसा उद्धार होगा? कुछ नहीं, श्रद्धा होगी तो भगवान आपका उद्धार करेंगे। हमारे तो शक्ति नहीं अपने आप का उद्धार करने की, लेकिन भगवान अगर चाहते हैं तो क्या नहीं कर सकते। वो केवल बोलते हैं श्रद्धा से पाप मुक्त होकर मेरे नाम का जप करो, तो भगवान स्वयं आप पर कृपा करके हमको भी उद्धार कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, आप सब लोगों को हम निमंत्रण देते हैं गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव उत्सव में, आप आइए और इस दिव्य वस्तु का लाभ लीजिए और जीवन का उद्धार कीजिए। श्री गौरांग महाप्रभु की जय।